मैं नजफ से मशहद गया और वहाँ काम शुरू किया। उसके एक दो साल बाद मरहूम हाजी हबीब साहब मेरे पास आए और कहा कि इस इलाके के जवानों को दीनी तालीम के हुसूल का अजहद शौक है। खुदा का शुक्र है कि उनकी माली हैसियत भी अच्छी थी, बाजार और इलाके के बाइज़त ताजिरों में शुमार होते थे। मुझसे दरख्वास्त की कि आके एक छोटा सा मदरसा बनाऊं। मदरसे के अखराजात के लिए ये ज़मीनें मेरे हवाले कर दीं। अलबत्ता उस वक्त ये बागात इतने आबाद नहीं थे, लेकिन खुदा के फजल से पिछले चंद सालों से काफ़ी फल देने लगे हैं।
खुदा का शुक्र है, खुदा आपका भला करे हाजी साहब।
अच्छा रहीम साहब, आप अपनी फैमिली को साथ नहीं लाए?
नहीं हाजी साहब, मैंने सोचा कि बाजार की मस्जिद के फराइज भी अंजाम दूंगा और साथ ही आपकी शागिर्दी भी करूंगा, तो सोचा वो नहीं होंगे तो मेरा जहन आज़ाद रहेगा।
फिक्र की आज़ादी का फैमिली की मौजूदगी से कोई रब्त नहीं है। मरहूम शाह आबादी पैदल पांव और खुश्क रोटी का एक थैला लेकर अपने बीवी बच्चों के साथ एक गांव से दूसरे गांव और एक इलाके से दूसरे में जाते थे और तबलीग करते थे।
जी हाजी साहब, दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन यही फैमिली के रोज़मर्रा के काम भी इंसान की तवज्जो में खलल डालते हैं।
अच्छा, तो ये बताएं कि क्या बेगम साहिबा वहाँ तन्हा रहने पर राजी हैं?
वल्ला ज़ाहिरन उनको एतराज़ भी नहीं है।
अलबत्ता जैसा कि मैंने सुना है, मस्जिद के अंजुमन वाले चाहते हैं कि आप लंबी मुद्दत के लिए मस्जिद के उमूर संभालें।
नहीं हाजी साहब, ये मुमकिन नहीं है, मेरे झंझट बहुत ज़्यादा है।
दीन खुदा की तबलीग झंझट नहीं है रहीम साहब।
नहीं नहीं हाजी साहब, खुदा ना खास्ता, मेरा मतलब ये नहीं था।
मजाक कर रहा हूँ,
मैं रोजाना की मसरूफियात के बारे में बात कर रहा हूँ।
जी
हाजी साहब, मैंने सुना है कि लोगों ने आपसे गुजारिश की थी कि बाजार की मस्जिद के फराइज आप संभालें, लेकिन गालिबन आप नहीं माने। खुदा ना ख्वास्ता, मैंने गुस्ताखी तो नहीं की कि आपकी इजाज़त के बगैर यहाँ चला आया?
नहीं नहीं, हर किसी को खुदा ने किसी काम के लिए बनाया है। मुझसे दरख्वास्त की गई थी, लेकिन मैं बाज़ वजूहात की बिना पर नहीं मान सकता था।
वो कैसे हाजी साहब, ऐसा तो नहीं कि खुदा ना ख्वास्ता उनकी नीयत ख़राब हो?
नहीं, हर इंसान का अपना एक मिजाज होता। मैं चाहता हूँ उम्र के इन बाकी अयाम में इलाके का इमाम मस्जिद रहूं और मदरसा चलाऊं, बस यही। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम,
शुक्रिया।
वाह वाह वाह, रजा अली बेटे। वालेकुम सलाम।
जो टीवी में आते हैं?
हाँ मैं वही।
भाई साहब, रजा अली को आपकी खिदमत में दे रहा हूँ।
क्या मतलब?
मतलब ये कि ये आपका गुलाम है, मैंने इसका स्कूल में नाम नहीं लिखवाया है ताकि इस साल स्कूल बिल्कुल ना जाए।
क्यों?
वो इसलिए कि ये मदरसे में आकर दीनी तालीम हासिल करे। बरात अली तो कुछ नहीं बन पाया, शायद खुदा ने चाहा तो ये बन जाए।
ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसी बातें ना करें।
आओ यहाँ आओ। भाई साहब, 4-5 साल बाद इसकी शादी भी कर दूंगा ताकि बरात अली की तरह जन मुरीद ना बने और उसके चलन ना अपनाए। भाई साहब, मैं आपके सामने इससे एक सवाल पूछता हूँ। आओ इधर आओ बेटा। हाजी साहब के सामने मैं तुम्हें 10,000 तुमान दूंगा, तुम बताओ कि खुदा कहाँ है।
मैं आपको 1,00,000 तुमान देता हूँ, आप बताइए कि खुदा कहाँ नहीं है।
देखिए देखिए, हमने ये सवाल पहले से तय नहीं किया था, अब बताइए क्या इसको दीनी तालिबे नहीं बनना चाहिए?
अहमद अली साहब, आपको यकीन है कि इस बच्चे को मदरसा पसंद है और स्कूल नहीं जाना चाहता?
इससे ही पूछ लेते हैं, अभी पूछते हैं ताकि आपका शक खत्म हो जाए। रजा अली बेटा, क्या तुम हाजी साहब के यहाँ दीनी तालिबे इल्म बनोगे?
हाँ चाहता हूँ, आप हमारे मोहल्ले आएंगे ताकि मेरे दोस्त आपको देखें?
इंशाल्लाह।
हाजी साहब, स्कूल का सबक पढ़कर ये कौन सा तीर मार लेगा? 2×4 सीखना इसके आखिरत के काम थोड़ी आएगा। जाके जरबा जरबू पढ़ेगा तब तो कुछ बन पाएगा ना।
जोर और जबरदस्ती से बच्चे को जरबा जरबू याद नहीं कराया जा सकता, अभी तो उसके खेलने के दिन है।
के पास खेलने जाओ।
यही एक नमूना जो बन के निकला है, यही काफी है। चलो चलो, सवार हो जाओ गाड़ी में, खेलेंगे उसके साथ, कमाल है।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
बस इतना ही?
बस इतना ही।
तुम कितना कम खाने लगे हो, काम करते हो, ज्यादा खाना चाहिए।
परेशानियों ने मेरी भूख खत्म कर दी।
कैसी परेशानियां? तुम तो वही कर रहे हो जो अब्बू कह रहे हैं, कुछ अरसे बाद हम शादी कर लेंगे और सब हल हो जाएगा।
हाजरा, तुमसे एक सवाल पूछूं, सच सच बताओगी?
तुमने कब मुझसे झूठ सुना है?
अगर मैं तुमसे चाहूं कि मुझसे शादी की खातिर तुम अपनी पूरी फैमिली छोड़ दो, तो क्या छोड़ दोगी?
नहीं जानती, इस बारे में आज तक कभी सोचा ही नहीं।
अच्छा तो अब सोच लो।
इन्हीं दो मिनट में? तुम इतने परेशान क्यों हो बरात अली? कुछ दिनों बाद हालात मामूल पर आ जाएंगे और तुम्हारे बाबा भी मान जाएंगे।
नहीं मानेंगे, अब भी हर रोज यहाँ आते हैं और ऐसे बुरी तरह से मुझे घूरते हैं कि मेरी हालत खराब हो जाती है, समझी?
कैसे?
अपने उन मेहनतकश और खुरदुरे हाथों से मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं और ऐसी बातें कहते हैं कि साफ लगता है कि मुझे मजीद अपना बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है। नाराज हो गई?
नहीं।
क्यों नहीं हो गई? हो
ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? क्या ये सब मेरा कसूर है?
मैं ऐसा कब कह रहा हूँ तुमसे?
इस तरह मुझे हाजरा साहिबा मत कहो।
अच्छा माफ करो।
मैंने तुमसे क्या कहा बारात अली? क्या बाबा के पीछे पड़ने को कहा? घर की चौखट पकड़कर बैठने और राजी करने को कहा?
नहीं हो सका ना।
इसलिए कि तुम हिम्मत हार गए हो, सर झुका के कहा कि जी अच्छा जो आप कहें मंजूर है। क्या इसमें मेरा कसूर है?
पता नहीं तुम्हें हमेशा गलतफहमी क्यों हो जाती है।
ये लो, गलतफहमी बस इसी को तकरार करते रहो, जरूर कोई मतलब होगा तुम्हारा। पता है असल बात क्या है? मैं तुम्हारी बीवी बनना ही नहीं चाहती। हाँ, तुम जाओ अपने हाजी शहीदी और बाबा के पास। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर एहसान जताओ।
जब मैं कहता हूँ तुम्हें गलतफहमी हो जाती है तो कहती हो कि नहीं होती।
हाँ होती है। एक बार और कहो कि गलतफहमी होती है, तकरार करते रहो। मेहरबानी करके कल से खेत में मत आओ, तुम्हें तकलीफ होगी बरात अली साहब।
देखो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना आऊँ, तुम्हारे अब्बू अकेले हैं, एक अकेला आदमी क्या कर सकता है।
मैं खुद ही उनका हाथ बटाऊंगी।
जी हाजी साहब।
मजीद, इसको ले जाके बल्दिया में वाहदी साहब को दे आना।
ये है क्या?
बताता हूँ, परसों जब उनसे बात कर रहा था तय पाया कि मस्जिद में तालीमी कामों के लिए हमें कुछ पैसा दे। ये उनको दे के उनका शुक्रिया अदा करो और कहो कि जब पैसा पहुंच जाएगा हम फौरन काम शुरू कर देंगे।
समझ गया हाजी साहब, आप जाओ। फिक्र है, चलता हूँ।
मैं हाजिर हूँ।
आप भी आए, मिलके हाजी साहब के पास चलते हैं।
किस लिए?
मैंने नजमा आंटी को जमीनों का मसला बताया, उनसे दरखास्त की कि शहीदी साहब से बात करें। कहा नहीं करेंगी, जो कहना है खुद ही करो।
तो तुम जाके कह दो ना।
बेहतर है आप भी आएं।
मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे लिए भी बेहतर है कि ना जाओ।
लगता है आप इतना गैर जरूरी कामों में मसरूफ हो गए हैं कि जानते ही नहीं कि मायदा के साथ क्या होने वाला है। शायद खुद ही मुतवज्जे नहीं होना चाहते।
देखो हुदा बेगम, अगर मैं तुम्हारा हिस्सा खरीदूं तो तुम आराम से बैठ जाओगी, जमीनों का पीछा छोड़ दोगी।
आपने तो कहा पैसा नहीं है आपके पास। अगर पैसा है तो आरश के हिस्से का दे दें, जमीनों का मसला मुझ पर छोड़ दें आप।
देखो मैंने पहले भी बताया था, इस पार्टनरशिप में आरश का हिस्सा एक तिहाई नहीं है, नफा और नुकसान दोनों में। दूसरे ये कि मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं है, पैसे लेने के लिए तुम्हें एक साल सब्र करना पड़ेगा।
मुझे पैसा कर्ज खाहों का हिस्सा देने के लिए चाहिए। मैं अपनी जमीनें लेके रहूंगी, चाहे कम कीमत पर ही हो, उनको बेच के मायदा को इस दलदल से निकाल लूंगी।
लगता है 15 साल बाद भी तुम्हारे मुर्गे की एक ही टांग है।
तो नहीं आएंगे आप?
नहीं, मैं ये नहीं कर सकता कि उस इंसान के मुकाबले में जिसके पीछे सारी उम्र नमाज पढ़ी है खड़े होके कहूँ कि हाजी साहब ये जमीनें जो खिदमत खल्क के काम आती हैं खाली करा दें। हुदा बेगम, तुमने हाजी साहब का नमक खाया है, तुम उनके एहसान मंद हो, नमक हरामी ना करो। इन जमीनों का लेना सिर्फ उनको हासिल करना ही नहीं है,
बल्कि लोगों के दीन से खिलवाड़ है और लोगों और हाजी शहीदी के अकीदे से भी खेलना है।
ठीक है।
अपनी बेटी को पकड़ती हूँ मायदा, अभी आके पकड़ती हूँ।
कितनी प्यारी बच्ची है, क्या नाम है तुम्हारा?
मायदा।
कितना प्यारा नाम है मायदा।
मायदा कहाँ है? बेचारी इतना रोई कि खुद ही सो गई।
किस लिए रोई?
इसलिए कि उसकी माँ को 2 बजे आना था लेकिन अब 5 बज रहे हैं।
यूनिवर्सिटी में काम लंबा हो गया था,
मैंने एक गलती की और तुम पीछे पड़ गई और सईद के चक्कर में चली गई। हमें तबाह करके रख दिया उसने।
तुम क्या बड़बड़ाती जा रही हो?
अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। इस पूरे शहर में एक ही पार्क है, एक ही सिनेमा है, 2 रेस्टोरेंट, तुम क्यों लोगों को अंधा समझती हो? खुदा, इस सईद को अपनी जिंदगी बर्बाद मत करने दो। तुम अब एक माँ हो, अकेली नहीं हो कि जो जी में आए करती जाओ।
मैं सारी उम्र अम्मी अब्बू की खातिर हर काम करने से डरती रही, अब नहीं चाहती कि मायदा की खातिर मुस्तकबिल में खुद को कोसती रहूं।
मुझे तुमसे हमदर्दी है इसीलिए कह रही हूँ।
तुम्हें उस वक्त हमदर्दी होनी चाहिए थी जब अपने शौहर के साथ मिलकर मुझे झूठी कहानी सुनाई।
झूठ इसलिए बोला था कि हम खुद ही तुम्हारी बर्बादी का सबब बने थे।
तो उसके बाद कौन सा सुकून मिला? सईद इंजीनियर है, कंपनी का मालिक है। इस बार मैं पिछली गलती नहीं दोहराना चाहती।
क्या हुआ नरगिस बेगम?
मैं तो चकरा के रह गई हूँ। हम दोनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था?
सिर्फ आधे घंटे के लिए सूप का सामान लेने बाहर गई और लोगों की बकवास सुनकर वापस आ गई।
कैसी बकवास हाजी अबीब? हुदा के खिलाफ लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि हुदा ने सईद की खातिर जलील से अलग होने का बहाना बनाया है।
अस्तग़फ़िरुल्लाह, अगर कोई मेरे सामने इस तरह की बात करता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता।
कुछ कीजिए कि ये लड़की सईद को दिल से निकाल दे।
अगर बात सुनने वाली होती तो आज उसका ये हाल ना होता।
तो आप खुद भी मानते हैं ना?
मैं क्या मानता हूँ? ठीक है, मेरी बेटी जिद्दी है, लेकिन
हम अपनी बेटी को जानते हैं, लेकिन लोग वो तो दूर से हर चीज को देखते हैं ना।
जो लोग दूर से देखते हैं उनको अपनी राय देने का कोई हक नहीं है।
अब लोगों का मुंह तो हम नहीं बंद कर सकते ना, ये बताइए कि क्या करें?
हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, लोगों की बातें नहीं सुनेंगे।
हाजी साहब, मैं 4 साल पहले इसका हाथ मांगने बिल्कुल अकेले आया था। अगरचे जानता था कि आप ऐसी फैमिली से हैं कि बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई लड़का अकेले आपकी बेटी का हाथ मांगने आए, लेकिन मैं आया क्योंकि मैं उसको चाहता था।
5 साल के बाद दोबारा फिर क्यों चले आए?
हकीकत यह है कि हमारी कंपनी को यहाँ कंस्ट्रक्शन का एक ठेका मिला है, वही चेक करने आया हूँ।
समझते हो कि मैं यकीन कर लूंगा?
शायद मेरा ज़ाहिरी हुलिया ऐसा ना हो, लेकिन मैं भी बाज़ चीज़ों पर अकीदा रखता हूँ। जब मालूम हुआ कि हुदा साहिबा की शादी हो गई है तो मैंने उनको बिल्कुल भुला दिया। मैं क्या करूँ हाजी साहब?
तुम दोनों की शादी हुदा को बहुत महंगी पड़ेगी, ये एक छोटा शहर है।
हाजी साहब, हम कोई गैर शरई काम तो नहीं कर रहे हैं, मेहरबानी करके मान जाइए।
मेरी तुमसे एक गुजारिश है, इस वक्त हालात साजगार नहीं है, तुम फिलहाल तेहरान लौट जाओ, चंद महीने बाद जब वापस आओगे तब बात करेंगे।
हाजी साहब, मैंने 5 साल पहले भी ये काम किया लेकिन उसका नतीजा देख लिया। मैं जब तक खुदा साहिबा से शादी नहीं करूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। खुदा हाफिज।
तुम्हारी शादी से तुम्हारे वालदैन की मुखालफत दुश्मनी की वजह से नहीं थी। अब भी हम बआसानी ये नहीं कह सकते कि उस वक्त सईद से तुम्हारी शादी ठीक काम था।
हाजी साहब, मेरी जिंदगी के चंद साल बर्बाद हो गए, लोगों के भी जो जी में आता है वो मेरे पीठ पीछे कहते हैं।
ये कि तुमको खुद पर यकीन है कि तुमने जलील से तलाक सईद की खातिर नहीं ली, ये काफी है। अब भी जल्द से जल्द जाकर तुम शादी कर लो ताकि लोगों की बातें खत्म हो जाएं।
हाँ जी साहब, हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमारा निकाह पढ़ाने पर राजी नहीं होते, कहते हैं।
कहने
कि
की बात नहीं है बेटी, तुम इसी वक्त जाके सईद को अपने साथ यहाँ ले आओ। जाओ बेटी।
हाँ जी साहब, मैं तमाम उम्र आपकी एहसानमंद रहूंगी।
मेहर मुशख्खस कर लिया है?
जी हाजी साहब, 1 जिल्द कुरान और
जी 1 कुरान।
जी हाँ।
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उम्मीद है एक दूसरे के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारोगे। मैं तुम दोनों की तरफ से वकील हूँ।
जी
जी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن كهتو موكل دي من موكلي أن المهر المعلوم जिस वक्त तुम्हारे अब्बू ने ये ज़मीनें मुझे हदिया की, मैंने उसी वक्त इन सारी ज़मीनों को वक्फ कर दिया और मैंने हाजी हबीब के वर्सा को इसलिए इस वक्फ पर निगरान बनाया क्योंकि नहीं चाहता था कि किसी के दिल में कोई शक व शुभा रहे और खुदा ना खास्ता को ये समझे कि हम उन ज़मीनों और बागात का पैसा अपने लिए लेते हैं।
कोई भी ये नहीं समझता हाजी साहब, मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा एतमाद है।
तुम्हारी मेहरबानी है, खुदा तुम्हारा भला करे, लेकिन बहरहाल हमारी जाती जायदाद सिर्फ यही घर है और हमारा रोज़मर्रा का खर्चा हमारे पास मौजूद चंद भेड़ों की बरकत से ही चलता है।
मेरा मतलब ये नहीं है, मुझे और दूसरे लोगों को आपकी नेक नियति पे कोई शक नहीं है, मसला इस वक्फ का है।
वक्फ में कैसा मसला है?
ये वक्फ गलत है, मेरे वालिद का हेबा ही गलत है। मेरे वालिद ने किसी दूसरे की जायदाद आपको दी है। मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ, मुझे इस रकम में से एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ मायदा का काम निपटाना चाहती हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है।
खुदा बेटी, तुम्हें अपने वालिद याद है ना? याद है ना
जी?
हाजी हबीब ऐसे आदमी नहीं थे कि बगैर हिसाब किताब के कोई काम करते या किसी और की जायदाद के बारे में फैसला करते।
पता नहीं।
पता नहीं, ये तो कोई जवाब ना हुआ खुदा बेटी।
मैं कागजात और असनाद की बिना पे कह रही हूँ, ये कि मेरे वालिद क्या सोचते थे और क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। आपकी इजाज़त से अब मैं चलती हूँ, आप सोच के मुझे बता दीजिएगा। मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ, खुदा हाफिज।
खुदा तुम्हारा निगहबान हो बेटी।
हम उसके बाप के लिए खैर और नेकी की सोच रहे हैं, पता नहीं ये लड़की क्या सोच रही है।
नजमा बेगम, आप तो कई साल नरगिस बीबी के साथ उठती बैठती रही हैं, इस मुद्दत में उन्होंने कभी ज़मीनों के बारे में कोई बात की थी, मसलन ये कि ये उनकी ज़मीनें थीं?
नहीं, क्योंकि अगर कुछ कहती तो मैं उसी वक्त आपको बता देती हाजी साहब। लगता है खुद आपको भी शक हो गया है।
हकीकत में मेरा जहन थोड़ा उलझा हुआ है।
कैसी उलझन?
जिस वक्त हम मशहद से वापस आए, हाजी हबीब ने ये ज़मीनें मुझे दीं, उस वक्त उनकी नरगिस के साथ कोई कश्मकश तो नहीं थी?
ये कश्मकश तो हर घर में होती है, क्या हम दोनों में कभी तूतू मैं नहीं होती? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरा माल उठा के किसी और को बख्श दें।
क्या कहूँ, इंसान किसी भी लम्हे गाफिल हो सकता है, शैतान हर लम्हे इंसान की घात में
ये रहता है। ठीक है कि उनका इख्तलाफ बड़ा था, लेकिन मेरे भाई माकूल और शरीयत के पाबंद इंसान थे, वो हलाल और हराम समझते थे, ये तो आप भी जानते हैं। नामुमकिन था कि वो ऐसा काम करते। और हाँ, सुलह के बाद उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा और नरगिस ने कोई दावा क्यों नहीं किया?
खुदा ही बेहतर जानता है। बहरहाल ये कागजात जो उस लड़की के पास हैं, अदालत के लिए ये मुतवर हैं।
हमें अदालत से क्या लेना देना, हमारे पास अक्लो शऊर है, जानते हैं कि क्या करना है। ज़रूर उनके दरमियान कोई तहरीरी तबादला हुआ होगा, या शायद उन दोनों मियाँ बीवी ने कुछ तय किया होगा।
उनकी बातें हमारे लिए दलील व गवाह नहीं हो सकती, तहरीर में भी अगर कुछ कागजात थे तो इस वक्त नहीं है।
मैं हैरान हूँ कि ये लड़की किस पे गई है, ना तो मेरे मरहूम भाई ऐसे थे और ना ही नरगिस बेचारी ऐसी थी।
नजमा बेगम, गीबत नहीं करो।
मैं सोचती हूँ कि आखिरकार वो कुछ करने वाली नहीं है, लेकिन चूंकि इस वक्त उसकी बेटी मुश्किल में फंसी हुई है इसलिए ये बातें कर रही है, वरना आपकी इतनी एहसान मंद है कि ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करती।
मुझे लगता है कि तुम्हारी गीबत करने की गाड़ी स्टार्ट हो गई है ना?
हाजी साहब, क्या हुआ, फिर किसी बहाने से हमसे जान छुड़ा के जाना चाहते हैं?
कहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ बैठ कर अपना काम कर रहा हूँ। अहमद अली साहब, मेहरबानी करके इस गली के नुक्कड़ पर रोकें।
इसी गली के पास?
जी जी।
तो जरा इजाजत दीजिए, साये में खड़ी कर दूं।
ठीक है, आप एक दो मिनट रुकिए, मैं बस अभी आता हूं।
नहीं हाजी साहब, दो तीन मिनट क्यों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। माफ कीजिएगा हाजी साहब, आप जाकर अपने खुफिया उमूर अंजाम दें। माजरत के साथ।
ला इलाहा इल्लल्लाह।
आपको बुरा लग गया क्या, मुझे दरवाजा खोलने दीजिए। छोड़िए, मैं खोलता हूँ। तशरीफ ले जाइए, जाइए।
वाह, सलाम अलैकुम हाजी साहब।
अलैकुम सलाम।
कैसे हैं आप?
मत करो।
अंदर तशरीफ लाइए। आइए आइए, मेहरबानी करें।
तुमसे एक गुजारिश थी, बात करनी थी तुमसे।
जी जरूर, आप हुक्म करो तो। जी आइए, आप हुक्म करें।
देखो साबिर बेटा, कुछ मुश्किलात पेश आई हैं जिनकी वजह से हमें घर के कागजात की ज़रूरत है। क्या ये मुमकिन है कि तुम अपने लोन की ज़मानत के लिए उन कागजात की जगह कोई और इंतज़ाम कर लो?
वल्ला हाजी साहब, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, यानी ढूंढ के देखना पड़ेगा कि कहीं और से इंतज़ाम हो सकता है कि नहीं। आप तो आसपास के अफराद को बखूबी जानते
हैं। हाँ, और माजरत के साथ ये बताओ कि इस कर्ज का कितना फीसद लौटाना है?
तकरीबन आधा आधा कर चुका हूँ।
तो अगर हो सके तो अपनी तरफ से कोशिश करके देख लो, इंतजाम हुआ तो ठीक, नहीं तो खुदा पर तवक्कुल
करते हैं। ऐसी बातें ना करें, हम पहले से भी आपके एहसान मंद हैं। अगर आपकी मेहरबानी ना होती तो मेरी बहन का जहेज न बन पाता।
वो खुदा की मेहरबानी थी, मैं तो सिर्फ एक वसीला था।
बहुत मेहरबानी हाजी साहब, बस माजरत के साथ, किसी को ना मालूम हो कि मैंने लोन लिया।
नहीं, बेफिक्र रहो, तुम्हारी बातें मेरे पास अमानत है।
आपकी बहुत नवाजिश है।
तो साबिर बेटे, अगर इंतजाम हुआ तो तुम मेहरबानी करके खुद ही मुझे इत्तला देना।
सर आंखों पर, जरूर जरूर।
बहुत बहुत शुक्रिया।
नहीं, ऐसी बात ना करें, अंदर आइए।
नहीं नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। अपना ख्याल रखना।
मेहरबानी।
खुदा हाफिज।
नवाजिश।
जाओ जाओ, तुम जाओ।
जी खुदा हाफिज।
हेलो, सलामुन अलैकुम दहकानी साहब, मैं शहीदी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दहकानी साहब, आप इस वक्त एजेंसी में हैं? जी जी। अरे ये मेरा नंबर है, मेहरबानी करके एजेंसी पहुँचने के बाद एक फ़ोन करें। जी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
हाजी साहब, क्या नेक उमूर कामयाबी के साथ अंजाम पा गए इंशाल्लाह? तशरीफ़ रखिए।
हाजी साहब, ये घर बहुत अच्छा है, इसका नक्शा और लोकेशन दोनों अच्छे हैं, अगर मुमकिन हो तो इसको ना बेचें।
आप अपने ख्याल से कब तक खरीदार ढूंढ सकेंगे?
नहीं मालूम, फिलहाल बाजार में मंदी है। अलबत्ता मेरा मकसद आपके मकान की कीमत बढ़ाना नहीं है।
वालेकुम
सलाम, कैसे हो बेटा?
तशरीफ रखिए।
वाकई में मंदी है?
हाँ मैं जानता हूँ, जानता हूँ।
हाजी साहब, आपने इस घर की आखिरी कीमत क्या लगाई है?
हकीकत में मेरी नज़र में कोई ख़ास कीमत नहीं है, बहरहाल आप ही को अख्तियार दे रहा हूँ।
पर मैं ऐसी कोई कीमत नहीं कहना चाहता कि बाद में आपके सामने शर्मिंदगी।
अच्छा, पहले किसी खरीदार को आने दें, उस वक्त तक इंशाल्लाह इसके कागजात भी आ जाएंगे, तब हम सोच समझ कर कोई कीमत रख लेंगे।
हाजी साहब, अगर थोड़े पैसे से आपका मसला हल हो जाता है तो मैं कर्ज के तौर पर आपको कुछ पैसे दे सकता हूँ।
खुदा आपको जजाए खैर दे, शुक्रिया, खुदा भला करे आपका।
आप नवा प्रोजेक्ट के लिए ये सब कर रहे हैं ना?
जी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह।
जी अच्छा, मैं अब आपको जहमत नहीं दूंगा।
बहुत खुशामदी, जहमत की
इजाजत दें। खुदा हाफिज।
या अल्लाह, खुदा आपको महफूज रखे। खुदा हाफिज।
अब्बा हुजूर, आप ये क्या करने जा रहे हैं?
हमें जैसे भी मुमकिन हो लोगों का कर्जा चुकाना होगा। तुमसे भी चाहता हूँ कि आज ही जाके अपनी गाड़ी बेच आओ। ये सही नहीं है कि इंसान के ऊपर लोगों का कर्जा हो और वो जाती गाड़ी रखे।
आप घर को बेचना चाहते हैं तो खुद क्या करेंगे?
खुदा की इस वसी जमीन पर कोई बंदा बगैर छत के नहीं रहता।
क्या बदकिस्मती आई हुई है।
अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हम इस खातिर ज़िंदगी गुजारते हैं कि हमारी कोई कदर कीमत बने, इसलिए नहीं कि हर कीमत पर ज़िंदगी गुजारें। और माले दुनिया तो खुदा की अमानत है, जब चाहे देता है, जब चाहे वापस ले लेता है।
ले ले अब्बू जान, ले ले, बस हमारी बेइज्जती ना हो, खामोशी से ले ले।
मोहम्मद हुसैन, जो इस बज़्म में ज़्यादा करीब होता है उसे जाम बला ज़्यादा पिलाए जाते हैं।
अब तो इन्हीं अशार के ज़रिए खुद को दिला सकते हैं।
ये अशार नहीं है बल्कि रवायत का तर्जुमा है। आज ही सब कर्ज खाहों को फ़ोन करके एक टाइम तय कर लो ताकि उनके साथ बात करें।
कोई फ़ायदा नहीं, मैं अपने पैसे चाहिए।
मेरे बेटे, घर का पैसा है, तुम अपनी गाड़ी भी बेच दोगे, मेरे और तुम्हारी अम्मी की भेड़ों के पैसे भी हैं, इलाके के एक किसान से बात की है, उसने कहा है कि प्रोजेक्ट की जमीनों को भी जरी जमीनों की कीमत पर बेच सकते हैं, वो पैसा भी आ जाएगा और बाकी जो बचेगा वो किस्तों में अदा कर देंगे।
अबूजान माफ कीजिएगा, मैं आबनुमा की जमीनों को नहीं बेचूंगा।
क्या मतलब कि मैं आबनुमा की जमीनों को नहीं बेचूंगा?
अबूजान आपके ख्याल में इन जमीनों को जरा ही जमीनों की कीमत में बेचने से हमको कितना पैसा मिलेगा? मैं फिर भी सारी उम्र मकरूज ही रहूंगा। हमें चाहिए कि इस केस पर जरा सा टाइम गुजरने दें, लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे।
ये कैसी बातें कर रहे हो तुम?
बाजार के रस्म रसूम यही है अबूजान, मेरी अपनी बात थोड़ी है।
बाजार की रस्म यह है कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया तो तुम जाके 10 और बंदों के साथ फ्रॉड करो। ख्याल रखना मेरे बेटे, ख्याल रखना। इस्लाम कहता है कि अगर तुम वजू कर रहे हो और सामने एक प्यासा कुत्ता खड़ा है तो पानी उसको दो, खुद तैमुम कर लो। दूध दूहते वक्त नाखून छोटे रखो ताकि उस बेचारे जानवर को तकलीफ ना पहुंचे। अगर घोड़े या गधे पर सवार हो तो हाल अहवाल पूछते वक्त नीचे उतरो ताकि उस जानवर का हक पामाल ना हो। और तुम्हारी गर्दन पर तो हक उन्नास है। अगर तुम मकरूज हुए, अपने पास पैसा होते हुए भी तुमने ना दिया तो हर रात उतना ही चोरी का गुनाह तुम्हारे हिसाब में लिखा जाएगा। ख्याल रखो बेटा, एहतियात करो, इस्तग़फ़ार करो ताकि खुदा तुम्हारी मदद करे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूब, जरा ठहरो, लोबिया डालने के बाद ढकना, ठीक है? मायदा जाओ मेरे पर्स से पैसे उठाओ और हाजरा के साथ जाकर 3 पैकेट नूडल्स के ले आओ।
हमारे पास बहुत है अम्मी जान।
नहीं कम है बेटा,
ठीक है। ये नूडल्स इतने हैं कि 2 देगों के लिए भी काफी है।
मैं बेहतर जानती हूँ कि तुम जानती हो
जी। अच्छा आओ चलते हैं, वरना कोई और बहाना बना देंगे।
हुदा बेटी जरा इधर आओ, इन सब्जियों को ठीक करते हैं।
ठीक है, मैंने उस पर ढक्कन रख दिया।
बहुत अच्छा किया बेटा। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, इतने सालों के बाद आई हो और आते ही अपनी बेटी को मुश्किलात में घिरा हुआ पाया है, लिहाजा इसको निकालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ।
और कर भी क्या सकती हूँ,
मैं तुम्हें हक देती हूँ, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो यही करती। मैं भी अगर अपने बच्चे को मुश्किल में फंसा हुआ देखती तो उसकी निजात के लिए सब कुछ करती।
हाँ लेकिन अगर सब मदद नहीं करेंगे तो ये मसला हल नहीं हो सकेगा।
हाजी साहब कुछ कर रहे हैं ताकि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो। तुम भी अब इस मसले के बारे में जो पहले छेड़ा था उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं सदके जाऊँ।
लेकिन फूफी जान, इस बात के लिए मेरे पास लिखा हुआ सबूत मौजूद है।
बेटा तुम जिस तहरीरी सबूत की बात कर रही हो वो तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। देखो अगर तुम 20 साल उनकी बेटी रही तो मैं 50 साल तक उनकी बहन थी। ये मुमकिन नहीं कि हबीब ने किसी और का माल वक्फ किया हो।
ये आपकी राय है।
तुम जानती हो अपने वालिद से कितना बड़ा गुनाह मंसूब कर रही हो? जानती हो तुम्हारे इस काम से तुम्हारे बाबा के जिम्मे कितने लोगों की नमाजें आ जाएंगी?
मुझे इससे कोई गरज नहीं कि अब्बू क्या सोचते थे। मैं इस वक्त सिर्फ ये जानती हूँ कि मायदा की निजात के लिए मुझे इन जमीनों को बेचना होगा।
मेरी बेटी अब इस दुनिया में हाजी हबीब नहीं रहे। कल कलां को शहर के सब लोग कहने लगेंगे कि उनकी बाकी जायदाद भी मशकूक है।
फूफी जान मैं खुद भी इस मसले को छेड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बात मायदा की है, वो जमानत पर आजाद है। अगर आपकी ज़ैनब के लिए मुश्किल पेश आती तो आप क्या करती?
बेटी तुम क्यों ये समझती हो कि मेरे लिए ज़ैनब और मायदा में कोई फर्क है? अच्छा बताओ क्या तुम्हें शक है कि हाजी साहब जमीनों के बारे में सच कह रहे हैं?
मुझे हाजी साहब पर कोई शक नहीं है, लेकिन अब्बू के बारे में शक है। मेरे पास तहरीरी सबूत मौजूद है और उनकी रूह से इन जमीनों को खाली करना पड़ेगा।
खुदा बेटी, हाजी साहब शरई लिहाज से जिम्मेदार हैं क्योंकि उनको यकीन है कि जमीनों का हेबा बिल्कुल दुरुस्त था।
जिस यकीन की आप बात कर रही हैं वो मायदा की जिंदगी की तबाही का सबब बन रहा है।
तुम वाकई में खुद को खूब कंट्रोल कर सकती हो, इन हालात में भी जबकि जमानत पर बाहर आई हो तब भी अपने नाना नानी के लिए सूप बना रही हो।
तो क्या करूं, घर में बैठने से क्या लोगों की मुश्किल हल हो जाएगी? इस तरह कम से कम ध्यान तो बढ़ जाता।
लेकिन मुझे कोई परेशानी होती है तो सबको मेरी सूरत से पता चल जाता है। कल ही बारात अली से लड़ाई के बाद जब घर पहुंची तो अम्मी फौरन समझ गई।
बारात अली तुमसे प्यार करता है, कम से कम उसे तो तंग मत करो।
प्यार तो करता है लेकिन नालायक।
इंसान को अपने शोहर के बारे में ऐसे नहीं बोलते।
सलाम। मायदा कैसी हो तुम?
आप खैरियत पूछने आए हो? ये तक देखने नहीं आए कि क्या वाकया पेश आया है? मुझे तुम लोगों की वजह से हवालात का मुंह देखना पड़ा।
मैं अम्मी और खाला से तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहता था, लेकिन तुमसे आंखें मिलाने से शर्म आती थी।
सलामुअलैकुम।
माफ कीजिए, आपको यहाँ क्या काम है? तुम लोग अंदर जाओ।
मोहतरमा, मैंने अपनी बेटी आपके घर भेजी ये देखने की कि आप हैं कि नहीं, क्योंकि मैं खुद आपसे बात करना चाहता था। हाजी साहब ने कहा आप यहाँ आई हैं। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, क्योंकि हाजी साहब के घर के सामने आपके साथ बहस नहीं करना चाहता था।
कैसी लड़ाई जनाब, आपने शिकायत कर दी, बात खत्म। अब अदालत के हुक्म का इंतजार करें ताकि हम जेल जाएं और आपका दिल ठंडा हो जाए।
जरा तुम मेरे साथ आओ गुस्ताख लड़के। सुनो मेरी बात, मेरा दिल तब ठंडा होगा जब मुझे मेरा पैसा मिलेगा। मोहतरमा, ये बताएं मेरा पैसा कब देंगी आप?
कोई पैसा वैसा नहीं है, जाइए जनाब।
मैंने आपके शौहर से भी कह दिया है, गाड़ियों और इजाफी सामान बेच के मेरा पैसा मुझे दे दें।
क्या हुआ जनाब, क्या हो रहा है यहाँ?
सलामुअलैकुम आजी साहबा।
अलैकुम सलाम। ऐसे यहाँ शोर मचाना अच्छी बात नहीं है।
तो क्या लोगों का पैसा खाना और हड़प लेना अच्छी बात है हाजी साहिबा?
हमारे माल की किस लिए निगरानी कर रहे हैं जनाब? पैसे नहीं है, आपसे पहले वाले भिखारी को दे दिए।
हाथ हटाओ अपना, मैं तुम्हारे बड़े से बात कर रहा हूँ।
खामखा बात कर रहे हैं, शिकायत मुझसे और मोहम्मद हुसैन से।
मेरी शिकायत इन खातून से है। देखिए मोहतरमा, गाड़ी आपके नाम है, अपने जेवरात और दूसरा सामान बेच के मेरे पैसे दे दें ताकि मैं आपकी जान छोड़ दूं।
मेरी खालाजात के जेवरात के बारे में बात करते हो? अभी जाके तुम्हारी शिकायत करता हूं।
ज्यादा बड़बड़ मत करो तुम।
अरे छोड़िए जनाब छोड़िए, अब उसने एक बात कह दी, आप माफ कर दें, हम आपका पैसा दे देंगे, जाइए।
मैं सिर्फ आपकी खातिर इनको कुछ नहीं कह रहा हूँ हाजिया साहिबा।
अच्छा आपने कितना पैसा दिया है?
मैंने 40 लाख इनको दिया हुआ है।
ठीक है ठीक है, हमें 2-3 दिन की मोहलत दे दें, मैं हाजी साहब से बात करूँगी, मशवरा करूँगी, फिर आपको इत्तला कर दूँगी, आप जाइए।
आपका बहुत शुक्रिया। हाजिया साहिबा, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, बस मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। तमाम उम्र एक एक पैसा जोड़ के कुछ रकम जोड़ी थी ताकि अपने बच्चों के लिए घर बना सकूं, लेकिन अब हर रात बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदगी उठा रहा हूं, क्योंकि काम मुलस्ता ही जा रहा है।
इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, हम आपको बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र रहें, अब तशरीफ ले जाएं।
खुदा आपका बहुत बहुत भला करे, शुक्रिया आपका।
तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर जाओ।
बेवकूफ कहीं का,
तुम भी बस करो आरश, इस बंदे खुदा का क्या कसूर है, इसको अपना पैसा चाहिए।
ये आरश कहाँ छोड़ के चला गया?
कर्ज खाहों ने आकर शोर मचाया, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको अब तंग मत करो।
तंग ना करूं क्या मतलब है? हमारा बेटा ऐसे ही मौकों के लिए तो है, उसे भागना नहीं चाहिए।
पापा भी अभी पहुँचे हैं, थके होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए, इनको तकसीम करने की कोई जल्दी नहीं है, आइए एक प्याली चाय पी लें।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं,
मैं जाके चाय पीता हूँ। मायदा बेटी
आपका बहुत शुक्रिया।
ओहो, हेलो हेलो, हाँ नहीं, उसे कहो मैंने खुद कहा है।
ये लीजिए।
ठीक है, खुदा हाफिज।
डरती हूँ।
किससे? हाजी साहब से क्या डरना, मतलब ये कि शर्मा रही है।
वो तो है, पर डरती हूँ कि शिकायत करूँगी तो ऐसा ना हो कि अदालत हाजी साहब के हक में फैसला दे, ऐसे में मायदा और मोहम्मद हुसैन के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे।
अगर इस इंतकाल में शरई लिहाज से अदालत तुम्हारे हक में राय ना भी दे तो हाजी साहब खुद जमीनों को तुम्हारे हवाले कर देंगे, यकीन करो।
क्या इसके शरई हुक्म के बारे में हाजी साहब से पूछ सकते हैं?
मगरिब ईशा की नमाज के बाद आ जाओ, मिलके पूछ लेते हैं। चलिए हाजी साहब।
एक मसला जो वक्फ में ज़रूरी है वो ये है कि ज़मीन मुतवल्ली के कब्ज़े में करार पाई हो। और उस जमीन के कब्जे का अमल अंजाम पा चुका हो। जिस जमीन जायदाद के बारे में आप पूछ रहे हैं, क्या इसमें यह अमल अंजाम पा चुका है?
जी हाजी साहब, यह जमीन तकरीबन 30 साल से मुतवल्ली के कब्जे में है।
तो इस लिहाज से इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठा सकते।
मोहतरमा की बातों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त खुद वक्फ के अमल में शक पैदा हो गया है।
जी, मैंने इनकी तमाम बातें सुनी। मैं सवाल के सब जावियों के बारे में वजाहत करना चाहता था। वक्फ करने वाले को बालिगो आकिल होना चाहिए और वो कस्दो इख्तियार से वक्फ करे। शरण उसको अपने माल में तसर्रुफ का हक होना चाहिए। बिना बरीन चूंकि उनको अपनी बीवी के माल में तसर्रुफ का हक हासिल नहीं था, लिहाजा ये वक्फ सही नहीं है।
हाजी साहब, हत्ता अगर मुतवल्ली शख्स बड़ा आलिम और मोहतरम इंसान हो तब भी उसके खिलाफ दावा कर सकते हैं?
बेहतर यह है कि मसले को सुलह आमेज तरीके से हल किया जाए।
और अगर ये मुमकिन ना हो तो?
अगर वारिस राजी ना हो तो इसका मतलब है कि उन पर जुल्म हुआ है और कब्जा करने वालों ने गलत काम किया है। उनके खिलाफ जरूर कदम उठाना चाहिए।
तो इस सूरत में हम कोई गुनाह तो नहीं कर बैठे?
नहीं, बल्कि सवाब है, क्योंकि ये जुल्म को खत्म करने के लिए एक कदम होगा। उठो मेरे भाई। डरो नहीं मेरे भाई, मैं हूं रहीम।
सलाम हाजी साहब।
अलैकुम सलाम। मेरी तो धड़कन बढ़ गई।
मैंने सोचा मेरे अब्बू हैं।
अब्बू? तो क्या अब्बू डरने की चीज है?
आप आधी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
अगर नमाज शब पढ़ना है तो उठो, क्योंकि फजीलत का वक्त गुजरने वाला है।
नहीं नहीं, मैं इस सबक को खत्म करना चाहता हूँ।
किस सबक को मेरे भाई? तुम्हारी आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं। इस वक्त तुम्हें सबक का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अरे, सभी बड़े उलमा अपनी जिंदगी में प्रोग्राम बनाया करते थे और अपनी जिंदगी, दर्स बहस और समाजी ताल्लुकात के लिए टाइम टेबल बनाते थे, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह नामुनज्जम तालिबे इल्म नहीं देखा।
हाजी साहब, मैं दिन में खेतों में काम करना चाहता हूँ, सबक का टाइम नहीं मिल पाता है।
तो खुदा जजाए खैर दे।
कैसी खैर? मैं इन दिनों खुदा से यही दुआ करता हूँ कि आसमान से कोई बिजली गिरे और मुझे दो टुकड़े कर दे, ताकि सब कुछ खत्म हो जाए।
एक तालिबे इल्म से इस तरह की बातें करना बईद है।
मेरी जगह आप भी होते तो यही दुआ करते हैं। मैं बचपन से हाजी शहीदी साहब की खदमत में रहा हूँ। खुद शहीदी साहब ने मेरे कान में अजान कही थी। मैं उनकी मस्जिद का मुअज्जिन था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है।
क्यों, क्या हो गया?
छोड़िए, सुन के परेशान हो जाएंगे आप, जाने दीजिए।
जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम्हारे सादे किस्से की वजह से मैं नमाज में सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहूंगा। बताओ, तुम्हारा मसला क्या है?
असल में हाजी साहब, मेरे ससुर ने कहा है कि मुझे खेतों में काम करना होगा, मैं भी मजबूर हूं।
आशिकी के मैदान में कदम रखोगे तो उसके मसाइब भी झेलने पड़ेंगे। इसीलिए दुनिया के सारे बड़े अलमिये इश्क मोहब्बत से शुरू होते हैं।
क्या मुमकिन है कि हमारे लिए कॉमेडी में तब्दील हो जाए?
शुरू में तो इश्क आसान हुआ करता है, लेकिन बाद में मुश्किलें आ जाया करती हैं। बरात अली साहब, जिस रास्ते पर चल रहे हो उसी को जारी रखो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अंजाम अच्छा ही होगा। शब बखैर हो।
आमीन।
बरात अली, तुम कमरे में अकेले रहते हो?
नहीं, मैं और मुस्लिम एक कमरे में रहते हैं।
लगता है कल से मुझे भी तुम्हारे पास आना पड़ेगा।
क्यों, कुछ हुआ क्या?
नहीं, ये मेरा रूममेट बेचारा इब्तदाई शब से लेकर अब तक मुसलसल खर्राटे लिए जा रहा है।
अच्छा फरीद, ये बेचारा खुद डॉक्टर है लेकिन अभी अपने खर्राटों का इलाज नहीं कर सका, क्या करे।
अच्छा शब बखैर।
शब बखैर।
बरात अली, अगर नमाज शब पढ़नी है तो जल्दी करो, नहीं पढ़नी तो जाके सो जाओ।
नहीं, अब तो मेरी नींद उड़ गई है।
हाजी साहब।
सलामुन अलैकुम, तबीयत कैसी है, ठीक हो?
क्या मैं आपका थोड़ा वक्त ले सकती हूँ?
हाँ हाँ, चलो अंदर।
नहीं,
चलो
बाहर ही बात करें तो बेहतर होगा।
इंशाल्लाह के सब खैर है, बोलो।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने गुलशनाबाद की ज़मीनों और मदरसे के मसले के बारे में एक आलिम से बात की। उन्होंने ये कहा है कि ये वक्त शरई लिहाज से बातिल है।
देखो खुदा बेटी, मैंने इससे पहले भी तुम्हारी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इस मसले का मौजू ही मुंतफी है। तुम्हारे वालिद ने इन ज़मीनों की जिम्मेदारी मुझे दी थी।
मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ कि इस केस को अदालत में ले जाऊँ।
तुम्हें जो ठीक लगे तुम वैसा ही अंजाम दो। खुदा भी इंशाल्लाह मुझे अपनी पनाह में रखेगा ताकि मैं सही रास्ते पर कदम उठा सकूँ। इजाज़त दो, खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
इंज बरोया सुनिश्चन हवा क्या मैं